ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आवाज नहीं आई, जोर से एक बार बोलेंगे ओम शांति। आज हम सभी आज तीसरे सेशन में राजयोग के सभी एकत्रित हुए हैं। एक बार जोरदार ताली से हम अपनी चंद्रकला दीदी का स्वागत करेंगे, जो आज हमको परमात्मा के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमने कल आत्मा के बारे में जाना कि आत्मा क्या है। आत्मा को अपने आप को भरपूर करने के लिए हम जैसे शरीर का सोर्स ये पांच तत्व है, ऐसे हमारी आत्मा का सोर्स परमात्मा है। तो हमको अपने आप को परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें उसको जानने के लिए, क्योंकि जब तक हमको किसी से भी अपने आप को जोड़ना है तो उनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आज उनसे हमको जुड़वाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारी चंद्रकला दीदी, जो आज हमको बहुत विस्तार से हम सुनेंगे कि परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहते हैं, और भी बहुत सारी आप बातें सुनेंगे परमात्मा के बारे में। आप देख भी रहे हैं, ये एक बहुत पुरातन पहेली है। बहुत समय से लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान कौन है। आज वो पहेली को हल करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारी चंद्रकला दीदी, जो हमको बहुत विस्तार से हम सुनेंगे। आज तक हम परमात्मा को जानते थे लेकिन मानते थे, लेकिन हम आज तक जानते नहीं थे। लेकिन आज हम परमात्मा के बारे में जानेंगे कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं और हम क्यों उनको याद करते हैं, क्या हमारा कनेक्शन है उनसे। तो उन सब के बारे में आज हम सुनेंगे हमारी चंद्रकला दीदी से। तो एक बार फिर से हम दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति,
ओम शांति। हम सभी प्रभु प्रेमी परमात्म संतानी यहां बैठे हैं, अपने अंदर एक ही संकल्प सबके होता, परमात्मा वो हमारा सर्वस्व है, पिता है, हम तो उनको याद करते हैं, करते हैं। हर एक अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन जब कई बार बात होती है तो कोई कहता, हाँ मैंने अपने घर में भगवान के चित्र रखे हैं, मैं रोज आरती गा लेता हूँ, रोज दीप जगा लेता हूँ। कोई कहता मैं नित्य मंदिर में जाता हूँ, प्रभु सेवा करके आता हूँ। और कोई और भी आगे कह देते भगवान तो सदा सिमरन में रहता ही है। पर जब अपने अंदर से पूछते हैं कि सचमुच हम भगवान को याद कर पाते हैं, तो कहते हैं याद करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। प्रयास तो मैं बहुत करता हूं, अध्ययन भी करता हूं, मन नहीं लगता। तो वो योग साधना कैसी है, कौन सी है, या परमात्मा कौन है, कैसे याद किया जाए, इस विधि को और उस परम शक्ति को हम जानेंगे, समझेंगे और फिर अपने आप को सहज विधि से जीवन में आगे बढ़ाएंगे। योग शब्द जब प्रयोग करते हैं, कल भी हमने सुना, मैं कौन, मैं आत्मा, योगी, योग लगाने वाली, साधना करने वाली, तो एक शब्द आता है साधना, तो साधना का साध्य वो कौन? मैं साधना करने वाली साधक हूं, साध्य कौन? किसकी साधना करूं? तो आजकल का व्यक्ति कह देता, कुछ मिले, कुछ प्राप्ति हो तो मैं करूं, अन्यथा क्यों करूं? तो आप क्या सोचते हैं, भगवान से प्राप्ति होती है या नहीं होती है? होती है। परमात्मा से प्राप्ति है या नहीं है मुझको? तो कहेंगे बहुत प्राप्तियां हैं। जब भी कोई कष्ट आता है तो किसको देखते हैं? हे प्रभु तुम मदद करो, हे प्रभु तुम कहां हो, आओ मेरी पीड़ा हरो, मेरा दर्द हरो। तो परमात्मा से प्राप्तियां अनेक हैं। जीवन में अक्सर करके दो ही इच्छा होती, वो है जीवन खुशहाल हो, शांति से भरपूर हो, यही चाहते हैं। आज हरेक का अर्निंग सोर्स अलग होगा। कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, नौकरी में भी अलग अलग प्रकार की नौकरी, लेकिन चाहत क्या है? कमाई किसी की कितनी, लेकिन चाहत क्या है हर एक की? घर परिवार में शांति हो, मेरा जीवन शांतमय हो, मेरा जीवन खुशहाल हो। तो कहते हैं कैसे आएगी शांति? तो कहते हैं प्रभु कृपा। अब ये प्रभु कृपा कैसे हो? तो जब तक उससे मेरा नाता ना जुड़े, संबंध स्थापित ना हो, तो कृपा कैसे? बच्चा भी जब आपके आगे आता है, झुकता है, तो आप उसके ऊपर हाथ रखते हो, बेटा तो सुखी हो, बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। कब? जब वो आया, संबंध जोड़ा। ऐसे ही जब तक मेरा उससे नाता स्थापित नहीं हुआ, तब तक मेरी इच्छा पूर्ण कैसे हो? नाता कैसे जोड़ूं? हर चीज की एक विधि होती है। ऐसे ही परमात्मा से नाता जोड़ने के लिए दो चीजों की मुख्य जरूरत है। एक है स्व की पहचान, जो हमने कल की, मैं कौन। व्यक्ति जो होता है उस अनुसार अपने संबंध जोड़ता है, जिस लेवल पर होता है। मैं आत्मा हूं, ये हमने जाना। अब मेरा नाता किससे चाहिए? उस सर्वोच्च के साथ। स्व की पहचान के बाद चाहिए परम शक्ति की पहचान, और उससे नाता जोड़ने की जो विधि है, उसकी विधि कौन सी है? तो कहते हैं उससे नाता जोड़ने के लिए ये मन, मन विचार शक्ति है। इन विचारों को श्रेष्ठ बनाते बनाते हमें वहां तक पहुंचना होगा। तो बात निकली थी, कहते मन नहीं लगता, कारण क्या है? मन में अनेक प्रकार के उथल पुथल, ईर्ष्या, द्वेष, तेरी मेरी निंदा, इनको हमने स्थान दिया हुआ है, कचड़े से भरा हुआ है, तो लगे कैसे? क्योंकि मन में दुविधाएं हैं। ये दुविधाओं को हटाना ये हमें पहले करना होता, क्योंकि जैसे दूध को भी स्वच्छ पात्र में रखा जाता है, दूध अगर लेना होता है तो आप अक्सर करके क्या करते हैं, पात्र को साफ करते हैं ताकि दूध टिक सके। वो परम शक्ति है, परम पवित्र है, उसको स्थान देना है, उसका ध्यान करना है। तो किसको ध्यान, कैसे ध्यान? तो पहले इस मन को स्वच्छ करूं तो लगे। तो मन को स्वच्छ करने की विधि जो कल आपने सीखी, श्रेष्ठ चिंतन, मैं कौन, श्रेष्ठ आत्मा, ये श्रेष्ठ चिंतन आते ही बुद्धि ऑटोमेटिक उस परम सत्ता की ओर जाती है, सत्य की ओर जाती है। वो परम सत्य कौन? जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य में भी बहुत सी दुविधाएं हैं। कोई कहता है वैज्ञानिक अगर होगा, साइंस से जुड़ा हुआ होगा, तो वही कहेगा कि प्रयोगशाला में मैं जो प्रयोग करता हूं, जो प्रयोग में आता है वो सत्य। हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज की बात करते हैं, तो समाज तो आज कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही है सत्य कौन? फिर आगे बढ़ते हैं, राजनेता से बात करेंगे तो वो कहेगा जनमत ही सत्य है। लेकिन आध्यात्मिकता क्या कहती है? सत्य वो है जो अविनाशी है, अचल, अटल, अविनाशी है, जिसमें फेर बदल नहीं होता। वो कौन? परमात्मा वो शक्ति है जो सदा अविनाशी है। इसलिए परमात्मा को सच चित आनंद, सच्चिदानंद भी कहते हैं। सत्य है, चैतन्य है, सत चित आनंद, वो परम शक्ति है, परम आत्मा है। जब ये बात आती, जब मनुष्य उलझन में आ जाता, किसको माने? कोई उसे खुदा कहता, कोई उसे ईश्वर कहता, कोई गॉड कहता, अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं किसको स्वीकार करूं, किसको मानूं, किसको छोड़ूं? तो एक बार की बात है, एक कहानी सुना रहे हैं आपको। 5 बच्चे जो नेत्रहीन थे, उनको जू में ले जाया गया और उस दिन ये सोचा गया बच्चों को हाथी की पहचान कराई जाए, तो हाथी के आगे जाकर के खड़ा कर दिया और एक एक बारी बारी करके बच्चों को कहा, बच्चे तुम्हारे आगे हाथी खड़ा है, तुम्हें समझना है हाथी कैसा है, तुम इसके ऊपर हाथ रख के, हाथ फेर के देखो कैसा है, फील करो। एक बच्चे के हाथ में हाथी की पूंछ आई। उससे पूछा गया, हाथी कैसा है, विचार करो क्या कहा होगा। तो उसने कहा, हाथी हाथी तो रस्सी जैसा है। एक बच्चे ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, पूछा हाथी कैसा है, तो बोला हाथी तो दीवार जैसा है। तीसरे बच्चे ने हाथ फेरा हाथी के ऊपर, हाथी की सूंड हाथ में आई, बोला हाथी कैसा है, बोला हाथी तो सांप जैसा है। एक बच्चे के हाथ में हाथी के कान आए, बोला हाथी कैसा है, बोला हाथी तो पंखे की तरह है। क्या कहेंगे हाथी ऐसा है। एक बच्चे के हाथ में हाथी की टांग, उसने बोला हाथी तो खंबे जैसा है। क्या ये सब गलत माने या इसे सही माने, कंफ्यूज हो गए। यही हाल हमारा है, सारी विशेषताएं हैं पर हाथी को एक बात से तो नहीं देखा जा सकता। हाथी खंबा ऐसा तो नहीं कह सकते, हाथी पंखे जैसा ये भी नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये है, आखिर कौन। किसी एक विशेषता के कारण, एक अनुभूति के कारण हम उसको मान लें, लेकिन भगवान कौन, वो सत्य क्या है। तो आज पांच बातें ऐसी जिसको कसौटी के तौर पर हम देखेंगे, जिससे हम कुछ आकलन कर सकें कि परमात्मा किसे कहें। ये पांच बातें जिसमें हों, उसको हम देखेंगे। पहली बात, परमात्मा कौन है, जब ये बात आती तो कहेंगे कोई की मान्यता राम ही भगवान है, कोई की मान्यता कृष्ण ही भगवान है, कोई कहता आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता प्रकृति ही परमात्मा है। अब प्रकृति तो प्रकोप लाती है, आजकल तो हलचल बहुत होती है, तो क्या मानू, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा परमात्मा की संतान कहूं या आत्मा ही परमात्मा कहूं। मंदिर में गाया था, प्रभु तुम ही मात पिता, सब कुछ तुम हो, तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे। तो आत्मा ही परमात्मा कैसे। फिर ये भी कहा था परमात्मा से कि प्रभु दुख सुख में तुम ही मदद करते हो। तो कोई फिर कह देते ब्रह्म तत्व ही सत्य है, वो तो तत्व है जो रहने का स्थान है, पार ब्रह्म परमेश्वर तू सबका स्वामी, ये कहा जाता है। हे परमात्मा तुम तो पार ब्रह्म के रहने वाले हो। फिर कभी कभी कहते हैं परमात्मा तू कहाँ है, तू आकर मदद तो कर, आकर मना कहीं और से आता है, मेरे अंदर आत्मा में परमात्मा तू नहीं, और आत्मा में ही परमात्मा है तो ये कष्ट कैसा, दुख कैसा। घर में भी बच्चे झगड़ लेते तो मात पिता छुड़ाने का प्रयास करते, परमात्मा कैसे। आज तो दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी है, कल क्या हो कुछ पता नहीं। आप सबके मन में भी, कल भी बात आई थी सेशंस में, आप सबके मन में भी आता होगा कल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं। फिर कोई कहता राम ही ईश्वर है, कोई कहता कृष्ण ही ईश्वर है, सब धर्म तो उनको नहीं मानते, तो क्या किया जाए। तो बात आई थी पांच बातों की, कसौटी मान करके देखते हैं। पहली बात, परमात्मा वो शक्ति होनी चाहिए जो सर्वमान्य हो। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक है। जिसको सब माने तो वो परमात्मा है। दूसरी बात, परमात्मा वो शक्ति होनी चाहिए जो सर्वोच्च हो, जो सर्वमान्य हो, जो सर्वोच्च हो। सर्वोच्च अर्थात जिसके ऊपर कोई नहीं। हम सब जन्म मरण के फेर में आते हैं लेकिन उसका कोई मात पिता नहीं। हमारे माँ बाप हमसे ऊपर, उनके मात पिता उनसे ऊपर, लेकिन परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, उनके ऊपर कोई नहीं। हम अनेक प्रकार के चक्रों में हैं, सुख दुख के बंधनों में हैं, देह देह के संबंधों में है, लेकिन परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है। और साथ ही साथ परमात्मा सर्वोपरि है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम। तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, सर्वोपरि, जिसके लिए कहा गया सबसे परे ते परे रहने वाला ईश्वर परमेश्वर, और वो सबसे परे हर बात से न्यारा है। हम हर बात में फंसे हुए, वो इन सब से न्यारा है। वो पाप पुण्य से भी परे है क्योंकि वो सबसे परे। हम इन बंधनों में हैं, जन्म मरण में हैं, तो पाप और पुण्य का भी फेर है। पाप पुण्य में आते हैं तो पाप और पुण्य का फल भी पाते हैं, लेकिन भगवान के लिए ये नहीं कहेंगे कि वो पाप और पुण्य में आते हैं या पाप और पुण्य का फल पाते हैं। नहीं, वो सबसे परे है। आज मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करती है उस अनुसार उसको टाइटल्स मिलते हैं। अगर वो पाप कर्म करती है तो कहते हैं ये पापात्मा है। धार्मिक प्रवृत्ति की है तो कहते हैं ये धर्मात्मा है। पुण्य कर्म करने वाले को कहा जाता है ये पुण्य आत्मा है। जैसा कर्म उस अनुसार उसको टाइटल। महान कर्म करने वाले को कहेंगे ये तो महात्मा है। तो जैसा करते उस अनुसार उसको टाइटल मिलता। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, देव आत्माएं, लेकिन पुण्य परमात्माएं? करिए विचार। धर्म परमात्माएं? नहीं। उनके साथ आत्मा शब्द है, परमात्मा नहीं। आत्मा जैसा कर्म करती है उस फेर में है, लेकिन परमात्मा सर्वोपरि है, इन सब से परे। हम इन बंधनों में आने के कारण, इस चक्र में आने के कारण कभी अपने को दुखी मानते, कभी कोई छोटी सी चीज मिल जाती तो अपने को खुश महसूस करते, लेकिन परमात्मा ना कभी उदास ऐसा कहेंगे, वो कहेंगे वो तो सच्चिदानंद है। सबसे परे हम उस परमात्मा की संतान है, वो हमारे माता पिता हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, मंदिर में जाकर भी यही गाया। लेकिन उस परम सत्ता, उसका तो कोई माता पिता नहीं। चौथी बात, एक बात कही, सर्वमान्य है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि। चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो अपनी स्थिति गुण कर्तव्य में सदा परम हो। हमारी स्थिति, हमारी मनोस्थिति कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी हम अपने नाम के गुण अनुसार कार्य करते हैं। माता पिता अच्छे अच्छे नाम देते हैं, आजकल तो गूगल बाबा से देख देख कर नाम निकाले जाते हैं कि बच्चा बड़ा गुणवान बनेगा, ये सोच ये भावना बहुत सुंदर होती, लेकिन क्या जैसा नाम वैसा उसका कार्य होता है? एक बार एक व्यक्ति जिसकी नई नई शादी हुई, तो कुछ दिन बाद उसकी स्त्री ने कहा, देखो तुम्हारा नाम छज्जू है जो मुझे पसंद नहीं है। इस जमाने में ये नाम सूट नहीं होता, तुम इतने अच्छे कुछ अच्छा नाम तो रखो। अब उसके अंदर भी एक जिद सवार हो गई, व्यक्ति के अंदर, मैं अपना नाम बदली करूंगा। एक दिन सवेरे सवेरे उसने अपनी स्त्री को कहा, देखो आज मैं बाहर जाऊंगा, जो नाम मुझे अच्छा लगेगा वो मैं अपने ऊपर रख के आऊंगा। थोड़ी स्त्री के अंदर भी कंफ्यूजन भी हुआ, उधेड़बुन भी हुई, चिंता भी हुई, पता नहीं अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, आज शाम तक लौटेंगे, क्या करेंगे। बोला, अरे छोड़ो चक्कर, जो है जैसा वही ठीक है, वही मंजूर कर लेते हैं, नाम से हमारा क्या काम है, नाम तो संबोधन के लिए। बोला, नहीं अब तो मैं जाऊंगा, अपना नाम बदल कर आऊंगा। चल दिया सवेरे सवेरे दो रोटी अपने साथ बांध कर, थोड़ी दूर ही गया होगा, पास में एक खेत था, एक स्त्री वहां काम कर रही थी। बोला, माते तुम सवेरे सवेरे इतना काम कर रही हो, मेरे पड़ोस में रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोला, बेटा मेरे नाम से तुम्हारा क्या काम है? बोला, मैं जानू तो सही मेरे पड़ोस में कौन इतना कर्मठ सवेरे से काम पे? बोला, बेटा मेरा नाम लक्ष्मी है। बोला, लक्ष्मी? और तुम यहां खेती के बीच अपना धान कूट रही हो? बोला, काम तो करेंगे ना। चल दिया आगे, कुछ नहीं कहा। आगे गया, मंदिर के बाहर पहुंचा, वहां एक भिखारी खड़ा था। भिखारी ने कहा, 2 रुपया दे दे बाबू। भिखारी तो कैसे बात करते हैं आप जानते। बोला, 2 नहीं 10 दूंगा, तो मुझे अपना नाम बता दे। बोला, बाबू मुझे तो रुपए से काम है, लेकिन आपको मेरे नाम से क्या काम है? बोला, इस बात में मत पड़ा, तो मुझे अपना नाम बता दे। बोला, मेरा नाम धनपत है। अंदर में विचार चला, धनपत मांगे भीख? नहीं जमी बात, आगे चला गया। आगे गया तो एक अर्थी जा रही थी, जो पीछे पीछे लोग थे उनसे पूछा, ये कौन थे जो चले गए? बोला, तुम्हें पता नहीं, ये तो नगर सेठ है। बोला, ऐसे तो मैं नहीं जानता, नाम बताओ तो शायद कोई संबंध निकल आए, मैं समझ सकूं, जान जाऊं कौन थे। बोला, ये तो अमरनाथ थे। ले, अमरनाथ भी चले। अब ये सारी बातें मन में चलने लगी, लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ भी चले गए, छज्जू नामी ठीक। तो हमारे और आपके नाम संज्ञावाचक हैं, लेकिन परमात्मा का नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। इसलिए आप जितने भी मंदिर देखेंगे, जहां भी जाएंगे, परमात्मा के गुणवाचक नाम मिलेंगे। मैं कई बार मार्केट से निकलती हूं तो बीच मार्केट में मंदिर आता, उसका नाम है रोजगारेश्वर, रोजगार देने वाला ईश्वर। भारत में द्वादश मंदिर है शिवलिंग, सब नाम देखिए, सोमनाथ जो आत्मा को सोम रस, ज्ञान का ये सोम रस देने वाला सोमनाथ, पाप कटेश्वर, कोई भी नाम देखिए, पाप को भस्म करने वाला, काटने वाला वो ईश्वर। ये परमात्मा के विभिन्न नाम, गुणवाचक नाम, लेकिन हमारे नाम, आज जो नाम है जरूरी नहीं वैसा मेरा कार्य। परमात्मा वो शक्ति है जो कहते हैं सब कुछ जानने वाला ईश्वर, जानी जानन हार प्रभु, वो सर्व ज्ञाता है। पर ज्ञाता का मतलब ये नहीं कि वो हर एक के चित्त मन में बैठा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, आजकल तो थॉट रीडर्स बता देते। लेकिन ज्ञाता वो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। जानने वाला है, इसलिए कहते हैं प्रभु तुम जानो। कोई भी बात होती है जब हम नहीं समझते तो क्या कहते हैं, ईश्वर जाने, भगवान जाने। भाई कल क्या होगा, प्रभु जाने, वो जाने। क्या होगा, वो ज्ञाता है और सदा देने वाला है। हम सदा दें, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे एक बार की घटना याद आती है। एक बार हम लोग एक फेयर करने वाले थे, उसकी तैयारी थी हमारे पास, और जो फेयर लगाने के लिए, मेला लगाने के लिए हमारे पास लोग थे, उन्होंने मुझे कहा, बहन जी एक कपड़ा लाना होगा, आप अपनी चॉइस का मंगवाएं तो ज्यादा अच्छा है, इस कलर का चाहिए, इतना मीटर चाहिए। ठीक है, मंगवाते हैं। बाय चांस मेरा ही जाना हुआ, मैंने सोचा बाहर निकले हैं हम ही ले चलते हैं। एक कपड़े की दुकान पर जाकर खड़े हुए, वो दुकान शायद 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले खुली होगी, और उसका जो मालिक था, जो व्यक्ति बैठा था वहां पर, वो पूजा कर रहा था, आरती कर रहा था, या अगरबत्ती जला रहा था, अगरबत्ती कर रहा था। मेरे को उसने कहा, बहन जी 2 मिनट आप बैठ जाइए। मैंने कहा ठीक है। और इतने में, कई बार आपने देखा शनि देव, वो उठा के करमंडल लाते हैं लोग और कहते हैं शनि, शनिवार का दिन था, वो व्यक्ति आया और जोर से बोला शनि। वो व्यक्ति अपनी आरती में, प्रार्थना में, अगरबत्ती में, उसमें बिजी था, कुछ नहीं जवाब दिया। फिर जोर से बोला शनि, फिर उसने जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार जोर से बोला शनि, अब उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जवाब दिया, कोई शनि मनी नहीं, तुम जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं दे। बोला शनि तुम्हारा अहित कर देगा, इतना गुस्सा कर रहे हो। तो मैंने भी उसको बोला, भैया तेरे को कुछ देना है तो दे दे, नहीं तो शांत रह। क्यों सवेरे सवेरे प्रार्थना के समय, आरती के समय गुस्सा कर रहे हो? बोला बहन जी अभी आरती मैंने पूरी नहीं की, आपने देखा मैं आरती कर रहा हूं, और इससे पहले 10 शनि को निपटा चुका हूं, ये 11वां है। कितने शनि? दुकान खोलते ही तो मनुष्य सदा दाता हो ऐसा नहीं होता। मेरा मन खुश तो मैं सहयोग कर सकता हूं, नहीं खुश तो ना भी करूं। लेकिन परमात्मा को सदैव दाता के रूप में ही देखा जाता है। प्रभु दाता है, देने वाले हैं, सदा देते हैं। तो अब बात आती, परमात्मा कौन? ये चारों पांचों बातें जिसमें हो उसको हम ईश्वर कह सकते हैं। सर्वमान्य हो, सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो, सर्वज्ञ हो, दाता हो, उसको त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री भी कहते हैं, तीनों लोकों को जानने वाला, सर्वज्ञाता, त्रिनेत्री तीसरा नेत्र, ज्ञान का देने वाला, त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानने वाला। अब ये बातें जिसमें हो हम उन्हें ईश्वर कह सकते हैं। तो हमारे सामने एक एक करके लेकर के आई है। क्या मनुष्य को हम ईश्वर कहें जिसका देह? परमात्मा के लिए तो कहा गया वो जन्म मरण से न्यारे हैं, अजन्मा है। और आज मुझे और आपको कोई चाहता होगा और कोई नहीं भी चाहता होगा तो नहीं मान सकते। साधु संन्यासियों के लिए शब्द आता वो महात्माएं हैं, वो सदा कहा करते हैं ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, जो धर्म स्थापक हुए। अब धर्म स्थापक की बात करते हैं तो गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, निर्भय निर्वैर कर्ता पुरुष। परमात्मा कौन है? तो उन्होंने कहा वो ज्योति है, प्रकाश। नूर है। फिर क्राइस्ट की बात करें तो उन्होंने भी कहा गॉड इज लाइट। परमात्मा ज्योति है। आई एम अ सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। महावीर जैनिज्म और बुद्धिज्म में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, लेकिन उनको ध्यान करते हुए दिखाया। किसका ध्यान? कैसा ध्यान? एनलाइटमेंट हुआ। किसका साक्षात्कार? ज्योति का। यही दिखाया उनको, एनलाइटमेंट हुआ, साक्षात्कार हुआ ज्योति। ऐसे ही हमारे अपने धर्मों में भी हम देवों को पूजते हैं। कोई हनुमान की पूजा करता तो हनुमान की पूजा करते तो हनुमान ने किसको पूजा? हनुमान से बड़ा कौन? तो हनुमान ने हृदय चीर के दिखाया राम। हनुमान में ताकत कहां से आई? तो कहा जय श्री राम। उनसे ऊपर कौन हुआ? और राम जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी रावण के साथ जब युद्ध करना था तो लोगों ने कहा कि अरे वो तो बहुत बड़ा शक्तिशाली है, उसके साथ युद्ध करने के लिए तो शक्ति की जरूरत होगी। रावण शिव भक्त है और उसके पास शक्ति है, उन्होंने भी शिव की स्थापना की और शक्ति ली रामेश्वर में, उसकी आराधना की। और कहा जाता है शिव द्रोही ममदास कहावे सो नर मोहे सपने नहीं भावे। फिर हम कृष्ण की भी महिमा करते हैं भगवान के रूप में, उनके लिए भी मान्यता है कि पांडवों के साथ युद्ध के समय उन्होंने भी पूजा किया, गोपेश्वर में शिव की आराधना की। और शक्ति ली, शिव शक्ति भी कहा जाता है, तो शक्तियों की भी महिमा कहां से आई? देवी पूजा, शिव की वो शक्ति। कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है कि राम के भक्त कृष्ण को नहीं मानते और कृष्ण के भक्त राम को नहीं मानते। ये मान्यताएं सर्वमान्य फिर कौन हुआ? हर धर्म जिसको माने वो उसका ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन सर्वमान्य? हमें कोई गिला शिकवा नहीं, जो धर्म जिसको मानता है वो उसका ईश्वर है। लेकिन जितने भी मैसेंजर और पैगंबर रहे सबने कहा हम भगवान का पैगाम देने के लिए, भगवान एक है, वो सत्य है। बार बार एक ही प्रतिमा सामने आती, वो ज्योति का बिंदु है, बिंदु है, गुणों में सिंधु है। इसलिए हर जगह ज्योति की उपासना है, परमात्मा ज्योति सम है, ज्योति की मान्यता है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, शिवम कल्याणकारी है, सदा है, सदा पवित्र है। हमारी संस्कृति अनुसार कई बार बिंदु लगाते हैं, स्पेशली व्यापारीगण, तो कहते हैं बोलो सर शिव, बिंदु लगाया तो कहेंगे शिव, कोई बात हो जाती तो कहेंगे सदा शिव, वो उसको याद करो। वो ज्योति सम कल्याणकारी है और सदा है, अचल अटल अविनाशी है। जैसे आत्मा अविनाशी है, न मरती है न जलती है न उसको कोई काट सकता है, ऐसे ही आत्मा का पिता भी कैसा होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है बच्चा वैसा ही होता है जैसा बाप। हम आत्माएं ज्योति सम हैं। जब व्यक्ति चला जाता है तो ज्योति जगाई जाती है। ऐसे ही आप मंदिरों में देखें, अखंड ज्योति जगाई जाती है, परमात्मा ज्योति। चर्च में भी मोमबत्ती ज्योति जगाई जाती है। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाई हमारे शिव को या किसी और को नहीं मानते, लेकिन वो भी क्या कहते हैं, नूरे इलाही। कहीं से भी आप देखें, नेपाल में जाएं, पशुपतिनाथ शिव का मंदिर, अमरनाथ शिव का मंदिर, कोई भी द्वादश ज्योतिर्लिंगम में देखिए, सब शिव के। और हर स्थान पर लिंग जरूर होता है, किसी और की मान्यता हो ना हो। तो परमात्मा ज्योति का पुंज है, परम शक्ति है, सदा देने वाला है, गुणों में सिंधु है, उनका नाम गुणवाचक है, चमत्कारेश्वर, रोजगारेश्वर, कोई भी आप देखिए, सब उसके कर्तव्यों के अनुसार नाम है। सबने उसको माना, वो परम शक्ति है। तो बात चल रही थी, जितने भी मंदिर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, या तो आप देखिए भगवान के नाम के साथ या तो नाथ आता या ईश्वर आता, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, फिर पाप कटेश्वर, पशुपतिनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, ईश्वर, उनका नाम ही इस प्रकार से, नाथों का नाथ वही है, सबका ईश्वर वही है, वही गुणों में सिंधु है। अब बात आती, जब हमने ये जान लिया परमात्मा सदा सुख देने वाला, ज्ञान का दाता, शांति का दाता, शक्ति का दाता, वो स्रोत्र है, जो आत्मा के कल 7 गुण बताए, ज्ञान, शांति, शक्ति, पवित्रता, सुख, आनंद, वो सब देने वाला कौन। हर चीज सोर्स पर जाती है, आत्मा का सोर्स भी वही परम स्रोत्र, परम शक्ति, परम शक्ति ईश्वर। जब हमें ये सत्य परिचय मिल जाता है तो बात आती उसका ध्यान कैसे करें, क्योंकि परमात्मा ही वो शक्ति है जो हमें अनेक प्रकार के दुखों से छुड़ाता। आज जिस समय हम चल रहे हैं ये कलयुग का वक्त, कलह की दुनिया है, चारों तरफ कलह ही कलह है, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार। तो गीता में भी वर्णित है परमात्मा कब आता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, दुख पापाचार बढ़ जाता है, तब तब मैं आता हूं और सबका उद्धार करता हूं, साधु संतों आदि सबका उद्धार करता हूं। आता हूं कहां से आता हूं? तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर, एक दुनिया यही जहां हम और आप हैं, साकार लोक। फिर कहते हैं इससे भी ऊपर कोई दुनिया, सटल वर्ल्ड, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव रचयिता, तीनों देवों की वो दुनिया। फिर उनका रचयिता कहां? हम सब आत्मा उसकी रचना। हम कहते हैं हम सब आत्माएं, कोई मरता है तो कहते हैं भगवान के पास गया, कहां गया? आत्मा का धाम और परमात्मा का घर, वो निज धाम एक ही परम धाम, जिसको मोक्ष शांति धाम, निराकारी दुनिया भी कहा जाता, वो परम धाम है जो हम सब आत्माओं का घर ब्रह्म लोक है। तो बात आती उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कैसे करें, जो शुरू में हमने बात की थी, इस मन को उसमें लगाना है, मन से संबंध को स्थापित करना है। तो अब हमको परिचय मिल गया वो कौन है, तो अपने मन को जागृत करेंगे चिंतन के द्वारा, संकल्प देंगे, और वो संकल्प मैं कौन, मैं आत्मा हूं। जो मन को संकल्प देते हैं वो धीरे धीरे अंदर में समझ बनती जाती है, जो सोचते हैं वो अंदर में धारण समझ आता जाता है। कहते हैं भाई सोच के तो देखो, व्यक्ति जो सोचता है वैसा स्वरूप बन जाता है, जैसा हम सोचते हैं। तो मैं पहले अपने को चिंतन दूं, मैं कौन, मैं श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा। फिर दूसरा चिंतन मुझे देना है, मेरा पिता कौन, वो परम पिता, वो शांति का दाता, वो सुख का दाता, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वो सत चित आनंद, वो शिव पिता है, सत्यम शिवम सुंदर, मैं उसकी संतान हूं। वो परम ज्योति है, इसको परम ज्योति भी कहते हैं। फिर मैं आत्मा, उस प्रभु संतान, अपने आप को अपने निज धाम की ओर ले जाओ, जो शांति का धाम है, जहां परमात्मा है। परमात्मा कहां है? उस शांति के धाम में मैं आत्मा अपने पिता के पास शांति धाम में शांत चित हूं। ये चिंतन करते करते उस शांति की अनुभूति में आ जाइए, उस स्वरूप में आ जाइए, और उसकी अनुभव करते करते वो रस लेते रहिए। धीरे धीरे आप पाएंगे आपका मन एकाग्र होता जा रहा है, और अंदर में वो सुख और शांति की, खुशी की अनुभूति हो रही है। तो चलो थोड़ी देर ये अभ्यास ध्यान का करें। थोड़ा सा हम सीधे होकर के बैठेंगे, और अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं तो एक क्षण के लिए खड़े होकर फिर बैठिए, ताकि हम कुछ अच्छी तरह ध्यान कर सकें। खड़े हो जाएं, अपने हाथ पांव थोड़ा खोल लें, जागृत हो जाएं, और फिर बैठ जाइए। बहुत अच्छा। और अब हम अपने आप को चिंतन देंगे। बैठिए, चिंतन शुरू करें उससे पूर्व एक बात और आपकी जानकारी में दूं। हम जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो प्रयास कीजिएगा खुले नेत्रों से बैठे, आंखें बंद न हो तो अच्छा। आप कहेंगे अभी तक तो यही सीखा था भगवान का ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके ध्यान करना है। भाई आंख बंद कर लेंगे तो कहा जाता, फिर दूसरी तरफ कहते हैं प्रभु तेरी एक नजर पड़ जाए, और प्रभु की नजर कैसे पड़ेगी? प्रभु तेरी कृपा हो जाए, और कृपा लेने वाला तो खोया हुआ है। आपके पास अपना कोई आता है जिससे आपका प्रेम हो, आप आंखें बंद करके बात करना शुरू करो तो कैसा लगेगा कि भाई क्या हो गया, मूड तो ठीक है। इन सब बातों से भी ऊपर आजकल की बात करूं, आजकल जो जिस वक्त से दौर से हम गुजर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है, यही कहते हो ना, स्ट्रेस बहुत है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। कभी कभी तो हमारे भाई बहन कहते हैं बहन जी आपको क्या पता कितनी परेशानियां हैं दुनिया में, परेशानियां हैं। अब जब मैं आंख बंद करके बैठूंगी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला तो क्या हो जाएगा, समझ गए ना? तो जो ध्यान करना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं, नींद आ जाएगी। प्रभु की गोद की अनुभूति की बजाय निद्रा देवी की गोद में चले जाएंगे, क्योंकि रात भर तो परेशानियों के कारण नींद साउंड स्लीप मुश्किल होती। तो फिर जब ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता, आपको मालूम है निद्रा देवी भी एक बार परेशान हो गई थी और उसने भगवान से कहा, भगवान आपने सबको स्थान दिया, मुझे तो कोई स्थान नहीं दिया, भक्तों को भी आपने हृदय में स्थान दिया, मेरा स्थान कहाँ है? आप सबको कहते हो तुम्हारा ये स्थान और मेरा स्थान, देवों को भी आपने स्थान दिया पर मुझे कोई स्थान नहीं दिया। भगवान ने कहा अच्छा तुमको भी आज स्थान देते हैं, जहां जहां मेरे भक्त होंगे तुम भी वहां वहां रहोगी। इसलिए आप देखो जब भक्ति करते हैं तो क्या होता है। तो अब हमें क्या करना है, हम आंख खोल करके बैठे, चैतन्य होकर के बैठे, तो आपको लगेगा देखूं कहां। अभी हम बात कर रहे थे आपस में तो कहां देख रहे थे, पूछना नहीं पड़ा कहां देखे, सामने देखे। जो अभ्यास करा रहा है उसके मस्तक पे एक सबसे ऊंचा स्थान आत्मा यहां रहती है, यहां से ही वाइब्स जाते हैं। और आप कहेंगे घर में, आप जहां भी बैठते हैं अपने घर में वहां आप इष्ट की, या आज तो आपको परिचय मिला शिव बाबा की प्रतिमा कहूं, ज्योति का चित्र कहूं, रख ले। और उसकी तरफ देखें, या कोई पॉइंट मन में फिक्स कर लें ताकि ध्यान इधर उधर ना भटके, इधर उधर ना देखें, बस खुले नेत्रों से बैठे। आज तो हम कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन कभी आप अपने आप से अभ्यास करते हैं और अगर आप बैठ सकते हैं सुखासन की स्थिति में आलती पालती मार के तो बैठे तो बहुत अच्छा, क्योंकि योग के लिए सबसे सुंदर आसन वही है। तकलीफ है सहारा लेकर बैठे अलग बात, लेकिन नहीं तो आसन सबसे सुंदर सुखासन, सीधा बैठे। इसलिए जब जब कॉन्सेंट्रेशन की बात आती है तब तब कहा जाता है सीधे होकर के बैठो। आप बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हो तो कभी ये नहीं कहते हो टेढ़े बाके बैठो, क्या कहते हो, बेटा सीधा होकर के बैठ के पढ़ो। कभी कभी बच्चे बिल्कुल लेट जाते हैं और वर्क करते हैं, नहीं सीधा होकर के पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन, जितना हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती तो हमारा सहज कॉन्सेंट्रेशन। अब हम चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन की ओर, प्रभु स्मृति की ओर। मैं कुछ गाइडलाइंस देती जाऊंगी, आप उसको धीरे धीरे मन ही मन अभ्यास करते करते उस स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं चैतन्य शक्ति ज्योति का पुंज हूं, इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मस्तक के बीचों बीच भ्रकुटी आसन पर विराजमान, ज्योति का पुंज, अपनी मन और बुद्धि की शक्ति के माध्यम से मैं आत्मा कुछ देर के लिए इस दुनिया से दूर, इस देह से दूर, अनेक प्रकार की आवाजों से परे सूर्य चांद तारागण से पार, पार ब्रह्म मह तत्व की ओर जाती हूं, जहां सुनहरा लाल प्रकाश चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, यही तो मुझ आत्मा का निज वतन है, निज धाम है। यही तो शांति का धाम है, मैं आत्मा अपने घर में शांति धाम में उपस्थित हूं, मेरे चारों तरफ यही शांति की तरंगे महसूस करें, शांति का दाता मुझ आत्मा का पिता शिव पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, मैं आत्मा अपने पिता के सामने वो ज्योति का पंच प्रकाश उनसे सर्व शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है। शांति का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह, सुख, शक्ति, खुशी, महसूस करें ये मुझ तक आ रही है। मैं आत्मा, शांति से ओतप्रोत हो रही हूं। ये मन शांत है, शक्तिशाली है। मैं आत्मा शांत चित्त हूं, सर्वशक्तिमान की संतान। शक्तिशाली हूं, सर्व शक्तियों से युक्त, भरपूर हूं। मेरे चारों तरफ सर्व शक्तिवान से आती हुई शक्ति दियों का प्रवाह, प्रकाश, उसके मध्य में आत्मा, यही प्रकाश, यही वाइब्रेशंस चारों तरफ वातावरण में भी फैल रहे हैं। ये वातावरण शक्तिशाली हो चला है। मैं शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा, अब एक ही भाव अंदर में, सबका भला, सबका कल्याण। विश्व को शांति की शक्ति का प्रवाह मैं दे रही हूं। कुछ पलों के लिए स्थिर जाएं इसी संकल्प में।
मैं प्रभु संतान सर्व शक्तियों से संपन्न, शांति की शक्ति स्वयं में समेटते हुए मैं आत्मा उन्हें बाह्य जगत में कर्म क्षेत्र में लौट रही हूं। इसी स्मृति और शक्ति के साथ मैं शांत चित्त सर्व शक्तिमान की संतान सर्व शक्तियों में संपन्न श्रेष्ठ आत्मा इसी स्मृति से कर्म करना है।